لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله العظيم. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری معرفت حاصل کریں. معرفت کا لیعبدون کا ترجمہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہاں لیعبدون لیعرفون کے معنوں میں ہے کہ تاکہ وہ ہماری معرفت حاصل کریں، پہچان حاصل کریں. یاد رکھیے، ہماری پہچان جانوروں سے اور اہل کفر سے، کافروں سے، وہ صرف معرفت کی بدولت ہے. اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر تو جانور بھی ہم سے آگے ہیں. اور کافر، ان سے بھی ہماری پہچان معرفت ہی کے ذریعے سے ہے. پنڈت صاحب تھے، پنڈت جی دیانند سواتی، پنڈت جی دیانند سواتی ان کا نام تھا. اور ہندوؤں کا ایک فرقہ ہے آریہ سماج، ہندوؤں کے ایک فرقے کا نام آریہ سماج ہے، اس کا بانی یہی تھا پنڈت جی دیانند سواتی. انہوں نے اسلام پہ بڑے اعتراضات کیے، تو کچھ علماء نے چاہا کہ ان سے مناظرہ کریں، یہ تیار نہیں ہوئے. انہوں نے کہا نہیں، تم میری ٹکر کے نہیں ہو، میں تو صرف مولوی قاسم سے مناظرہ کروں گا. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا، ان سے مناظرہ کروں گا بس. تو علماء نے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ آپ تشریف لے آئیں حضرت، وہ آپ سے ہی مناظرہ کرنا چاہتا ہے. فرمایا اچھا، ایسی بات ہے تو میں آ جاتا ہوں. حضرت طویل سفر طے کر کے اور پہنچے، اور بہت سے اپنے محبت والوں کو ساتھ بھی لیا تھا سفر میں، وہ ساتھ تھے. ان میں سے ایک منشی نحال احمد صاحب بھی تھے جو بہت بڑے ادیب تھے. تو مناظرے کی شرائط طے کرنے کے لیے انہی کو بھیجا گیا کہ آپ جائیے مناظرے کی ذرا شرائط طے کر لیں پنڈت جی سے. تو وہ طے کرنے پہنچے شرائط، تو انہوں نے کہا ابھی تو پنڈت جی کے کھانے کا وقت ہے، کھانے کے بعد ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے، آپ ذرا تشریف رکھیں. تو بیٹھ گئے. اب بیٹھے ہی تھے کہ ایک بہت بڑے تھال میں، اس وقت کلو نہیں تھا، سیر تھا، تو پانچ چھ سیر پوریاں، پوریاں ہوتی ہیں نا حلوہ پوری، پانچ چھ سیر پوریاں ایک تھال میں، اور ڈھائی سے تین سیر حلوہ، اور ڈھائی سے تین سیر ہی ترکاری، ترکاری ہوتی ہے نا وہ آلو کی جو اس کے ساتھ کھاتے ہیں. یہ پورا تھال اندر گیا پنڈت جی کے کمرے میں. منشی نحال احمد صاحب سمجھے کہ شاید اندر بہت بڑا مجمع موجود ہے، تو وہ کھا رہے ہیں. تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ پورا تھال جو تھا بالکل صفا چٹ ہو کے باہر آیا، کچھ بھی نہیں تھا اس میں. तो वो यही समझे कि अंदर कोई बहुत बड़ा मजमा है, 5-6 शेर तो पूरियां गई हैं और 2.5-3 शेर वो तरकारी और 2.5-3 शेर हलवा। खैर जब वो थाल खाली होके बाहर आ गया तो पंडित जी के जो खिदमत गुजार थे उन्होंने कहा आइए अब पंडित जी आपसे मुलाकात कर लेंगे, मुनाजरे की शराइत तय कर लेंगे। जब वो अंदर पहुंचे तो अंदर देखा कि सिर्फ पंडित जी बैठे थे। उन्होंने सोचा कि शायद और लोग जो जिन्होंने खाना साथ खाया है वो दूसरे दरवाजे से गए हो, मगर कोई दरवाजा था ही नहीं, दरवाजा एक ही था। वो बड़े हैरान हुए, बहुत हैरान हुए। तो एक खादिम मौजूद था, उसने कहा कि क्या सारा खाना पंडित जी ने खाया है, सब पूरा खाना इन्होंने खाया उसको? तो उसने कहा हाँ जी इन्होंने खाया। खैर मुनाजरे की शराइत तय हुई और ये वापस आ गए। वापस आने के बाद इन्होंने बता दिया हजरत को, हजरत को तो काम की बातें बता दी। साथियों के पास आके सारा वाकया सुनाया अपने दोस्तों के साथ पास कि भाई ये ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने देखा 5-6 शेर तो वो उन्होंने पूरियां खाई हैं पंडित जी ने, और 2.5-3 शेर हलवा खाया है, 2.5-3 शेर ही तरकारी खा गए वो। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुनाजरा अगर खाने में हुआ तो तब तो हमारे हजरत हार जाएंगे, वो तो 5-6 शेर तो ये इतना तो उनकी खुराक है और हमारे हजरत तो आधी रोटी पे ही बैठ जाएंगे, आधी चपाती पे ही हजरत बैठ जाएंगे। खैर ये बात बहुत हंसे सब और ये बात हजरत तक पहुंच गई। हजरत ने उनको बुलाया, मुंशी निहाल अहमद को, मौलाना कासिम नानोत्वी रहमतुल्लाह अलैह ने बुलाया और फरमाया तुमने क्या बात कही? और वो बहुत घबराए, फरमाया नहीं कहो, मैं तुमसे सुनना चाहता हूं इसलिए कि मैं जवाब दूंगा उसको। तो उन्होंने सारी बात दोहरा दी, उसने 5-6 शेर तो उसने पूरियां खाई, 2.5-3 शेर हलवा खा गया और 2.5-3 शेर तरकारी खा गया। अल्लाह, तो फरमाया कि इसके दो जवाब हैं कि तुमने जो बात कही ना कि हमारे हजरत से कहीं वो ये मुनाजरा ना करे कि आओ खाने में मुनाजरा करते थे, खाने का मुकाबला पहले करो। तो फरमाया कि इसका एक तो इल्जामी जवाब है और एक तहकीकी जवाब है। इल्जामी जवाब ये है कि क्या सारी चीजों के लिए मैं ही रह गया हूं, सारे मुकाबलों के लिए मैं ही रह गया हूं, खाने के लिए भी मैं ही हूं, ये इल्जामी जवाब है। और तहकीकी जवाब यह है कि ये खाना जो है, ज्यादा खाना ये हैवानियत की अलामत है, बहुत ज्यादा खाना खाना ये हैवानियत की अलामत है, बहीमियत की अलामत है, बहाइम यानी चौपाए वगैरह इनकी अलामत होती है, इंसानियत की अलामत थोड़ी है। तो अगर उसने हमसे ये कहा कि आओ पहले खाने का मुकाबला करो तो हम ये उससे मैं यूं कहूंगा कि भाई ये तो हैवानियत है इतना खाना खाना, लिहाजा अपने टक्कर किससे मुकाबला करो तो हम उसके सामने भैंसे को कर देंगे, उस पर भी नहीं मानेगा तो हम ऊंट को कर देंगे और उस पर भी नहीं मानेगा तो हम हाथी को सामने कर देंगे। अब बाउल कितना खाता है, तू ज्यादा खाता है या हाथी ज्यादा खाता है? तो ये दो जवाब दिए। और फरमाया तीसरी बात ये है, तीसरी बात भी सुन लो, तीसरी बात ये है कि तुमको यही ख्याल आया कि वो ज्यादा खाने में मुकाबला ना कर बैठे, तुम्हें ये ख्याल ना आया कि ना खाने का मुकाबला हो तो फिर क्या होगा? ना खाने का मुकाबला हो कि देखते बगैर खाए पिए कौन जिंदा रहता है। और फिर फरमाया हजरत नानोत्वी रहमतुल्लाह अलैह कि अगर ये तय कर लो उससे कि एक बंद कोठड़ी में मुझे भी बंद कर दो, उसको भी बंद कर दो, ताला लगा दो, 6 महीने बाद कौन तरोताजा निकलता है, फिर देखते हैं, इसमें मुनाजरा करो, इसमें मुकाबला करो कि 6 महीने बाद कौन जिंदा और तरोताजा। तरोताजा का लफ्ज है कि तरोताजा कौन निकलता है और कौन मर चुका होगा, उससे तो 2 घंटे नहीं रहा जाएगा, इससे जिसकी इतनी खुराक हो उसे बगैर खाए पिए 2-2.5 घंटे नहीं रह सकता ऐसा आदमी। और हजरत फरमाए 6 महीने तक रह लूंगा। तो भाई मैं ही अर्ज कर रहा हूं हमारी पहचान इससे नहीं है, अगर यही चीजें हैं तो इन चीजों में तो खाने में हैवानात हमसे आगे हैं, हाथी और आपने सुना होगा जुअल बकर एक बीमारी है, जुअल बकर यानी गाय की भूख, जुअल बकर का तर्जमा है गाय की भूख, वो मशहूर है। उसके आगे एक लकड़ी की ट्रॉली रखी होती है, उसमें भूसा भरा होता है, सारा दिन वो खाती रहती है मगर पेट फिर भी नहीं भरता। तो खाने का मुकाबला हो तो ये हमसे आगे, गाय भैंस और ये हाथी और क्या कहते हैं ऊंट, ये सब हमसे आगे हैं। हमारे मेदे तो इनके मेदों के सामने कुछ भी नहीं है। आपने देखा होगा ईद उल अजहा पे कितना बड़ा वो पेटा निकलता है। तो भाई अगर मुकाबला इसमें है तो ये हमसे आगे है। तो मालूम हुआ ये चीज हमारी पहचान नहीं है खाना पीना। इसीलिए फरमाया अल्लाह ताला ने कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो लेकिन हद से मत बढ़ो, हद से मत बढ़ो, क्योंकि हद से बढ़ना ये हैवानियत है। जितनी जरूरत है उतना खाओ। अल्लाह। और अगर इंजीनियरिंग में आप कहते हैं कि हम आगे हैं तो भाई ये भी गलत है। आप जानवरों से मुमताज हैं इंजीनियरिंग के मुकाबले में ना। शहद की मक्खी ये इतनी सी मखलूक है और वो आठ कोनों का छत्ता बनाती है, आठ कोनों का। उसके आठ कोनों में जितने कोने हैं सबका जाविया बराबर होता है, सबका साइज बराबर होता है। किसने उसको ये पहचान दी कि आठ कोनों में जितने ये आठ कोने हैं सबके नाप कर बनाती है? आप एक जर्रा बराबर फर्क नहीं है उसका। समझे मैं अर्ज करता हूं, शहद की मक्खी हमारी कोठियों और बंगलों को रश की निगाह से नहीं देखती। हमें पता चल जाए कि अल्लाह ने इसको ऐसी कारीगरी अदा फरमाई है तो हम उसके घर को रश की निगाह से देखेंगे। वो हमारे घर को खातिर, अगर हम उसको घर में रखना भी चाहें कोई बहुत बड़े बंगले में, तो वो वहां रहना पसंद नहीं करेगी, अपना ही घर बनाएगी कोने में ले जाके। अगर आप मजबूर करेंगे उसे, वो छत पे अपना ही घर बनाएगी कि मेरी ये डेढ़ इंच की मस्जिद ही सही है। तो वो हमारे बंगले कोठियों को मोहब्बत से रश्क भरी निगाहों से वो नहीं देखेगी। हमें पता चल जाए कि अल्लाह ने उसको ये कि आठ कोने होते हैं, इसके आठों कोनों का साइज बराबर, जाविया बराबर, तो हम देखते हैं उसके घर को रश्क की निगाह से कि अल्लाह ने इसको क्या चीज अता फरमाई। ये इंजीनियरिंग में तो हमसे आगे वो हुई, क्योंकि इंजीनियर कितना ही बड़ा इंजीनियर हो वो औजार का मोहताज होता है। बहुत नाप के टेप से नापेगा और उसके अब तो जदीद आलात आ गए हैं उनसे नाप के वो फिर सही तरह बनाते हैं, फिर भी खराबियां पैदा हो जाती हैं। और एक उसका घर है उसके पास कोई औजार नहीं कुछ नहीं, और फिर भी आप नाप के देखें, एंगल नापे उसका, जाविया नापे उसका, उसके जो आठ कोने आठों कोनों का साइज एक जैसा होगा, जर्रा बराबर फर्क नहीं होगा। तो इंजीनियर कौन अच्छा हुआ? आप तो आलात के मोहताज हैं, वो आलात के मोहताजी के बगैर ही वो इतना ऐसा प्यारा घर बना रही, तो कौन आगे हुआ? भाई सोचे तो सही। और फिर जो वो शहद जमा करती हैं, और एक मलिका मक्खी होती है जिसका नाम यासूब, अरबी में उसको यासूब कहते हैं, यासूब, या आइन सीन वाव बा, यासूब। जो मक्खी भी अगर कहीं जहरीले फूल से या जहरीली जगह से खराब जगह से रस चूस के आ जाए तो वहीं उसकी गर्दन तोड़ दी जाती है या उसको हलाक कर दिया जाता है, और कोई एजिटेशन नहीं होता, कोई हंगामा आ रही नहीं होती कि तुम ये क्या कर रही हो, मलिका के खिलाफ कोई एहतजाज नहीं होता, सब उसके हुक्म मानते हैं, उसकी हाकमियत को तस्लीम करते हैं। इसलिए कि ये एक मक्खी जो गलत शहद लेकर आई है और फर्ज कर लें कि जहरीला फूल से या जहरीली जगह से रस चूस के आई है, तो उसका जरा सा ये जो शहद वो जमा करेगी पूरे शहद को खराब कर देगा, तो उसको वहीं कत्ल कर दिया जाता है। और अक्सर शहद के छत्ते के नीचे आसपास मरी हुई मक्खियां पाई जाती हैं, ये वही होती हैं जिनको यासूब कत्ल करती है, फौरन कत्ल कर दिया जाता है। इस कदर जबरदस्त निजाम, ये निजाम है हुकूमत। तो इंजीनियरिंग में वो हमसे आगे, अगर हम कहें हम आगे हैं, हम आगे नहीं हैं, हम तो आलात के मोहताज हैं, वो आलात की मोहताजी के बगैर इतना अच्छा घर बना रही है, और हम कहें निजाम हुकूमत हमारा अच्छा है, आप किसी को कत्ल कर दें आपके खिलाफ क्या कुछ ना होगा, लेकिन वहां वो कत्ल करती है वो मलिका मक्खी, वही उसके हुक्म के खिलाफ कोई पर नहीं मार सकती, कोई मक्खी भी। ये निजाम हुकूमत उनका अच्छा है और पूरे अपनी मलिका की इताअत करती हैं वो सारी मक्खियां। यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अल्वानुहू फीहि शिफाउन लिन्नास, जो उसकी बरकत होती है कि उनके पेटों से वो शहद निकलता है जिसमें अल्लाह ने शिफा रखी। और अगर आप कहें कि हम अच्छा हाँ, एक और परिंदा याद आ गया, पंजाब में मैंने देखा, मुल्तान में ऐसे दरख्तों से वो उसके इतने बड़े वो घोंसले लटके हुए, यानी अंदाजा लगाइए आंधी आ जाए तूफान आ जाए झोपड़ियां गिर जाती हैं और अच्छे खासे घर गिर जाते हैं, मगर ये घोंसला बिल्कुल वैसे ही रहता, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसमें। तिनकों से बनाया हुआ घोंसला और लटका हुआ होता है वो, और उसके अंदर कमरे बने हुए होते हैं, उसके माँ बाप का अलग कमरा, बच्चों का अलग कमरा, उसके अंदर बच्चे उसके झूलते हैं। किसने उसको ये इंजीनियरिंग सिखाई है कि इतना मजबूत घर, तिनकों से इतना मजबूत घर बना लिया, घोंसला बना लिया लटकता हुआ, और वो भी इस तरह सुराई की तरह बिल्कुल उसका पेट होता है, और उस पेट के अंदर की जो दीवार होती है, अंदर का जो घोंसले का अंदर का, वो मैं बताता हूं आपको कि वो इतनी बड़ी वो चिड़िया होती है, उसकी दुम लंबी होती है काले रंग की, ये जो जुगनू होते हैं ना जुगनू, ये उनको पकड़ती है, पहले वो ये करती है कि अंदर की जो दीवारें होती हैं घोंसले के अंदर की जो पेट की दीवार है उसको वो लीपती है गाय के गोबर से, गाय या भैंस का जो गोबर होता है उससे लीप देती है, उसका लीप करती है ये आग पंजों में चोंच वगैरह में लाकर किसी तरह लीप कर देती, और उसके बाद ये पकड़ती है किसको, जुगनू को पकड़ के लाके और उस गोबर के साथ चिपका देती है। तो गाय और भैंस के गोबर में होता है फास्फोरस, और जुगनू में पाया जाता है रेडियम, जिससे वो चमकता है, अल्लाह ने उसके अंदर रखा है कुदरती तौर, वो चमकता है रात को। अब हम गए थे वहां, इतने ऐसे बिल्कुल रात का वक्त ऐसे चमकते हुए जा रहे थे, सरगोधा के करीब एक गांव में, बहुत करीब से हमने देखा और पकड़ा भी हमने, वो उसका जो उसकी जो दुम थी वो जल रही थी पूरी हरे रंग से, जैसे लाइट जल रही हो। अल्लाह अकबर, मैंने अपने हाथ में लेके देखा, हाँ सुभान अल्लाह, क्या अल्लाह की शान है, तबारक अल्लाह अहसनुल खालिकीन। तो इसके गोबर में पाया जाता है फास्फोरस गाय भैंस के, और इसमें पाया जाता है रेडियम, ये जाके उनको मार के और चिपका देती है गोबर के साथ। जब वो करती है तो फास्फोरस और रेडियम में आपस में रिएक्शन होता है, तामुल होता है, और वो अंदर का जो हिस्सा है वो रोशन हो जाता है, रोशनी हो जाती है उसमें। ये केमिस्ट्री किसने सिखाई उसको? अगर हम केमिस्ट्री में आगे हैं तो हम कहें केमिस्ट्री में हम आगे हैं जानवरों से, ना बाबा, आप केमिस्ट्री में भी आगे नहीं हैं। आपने तो केमिस्ट्री को हासिल करने के लिए न जाने बीएससी किया, आपने एमएससी किया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या क्या आपने पढ़ा, कितनी मेहनत की, वो तो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गई, उसने तो एमएससी नहीं किया, उसने तो बीएससी नहीं किया, उसने पीएचडी नहीं किया, किसने उसको ये केमिस्ट्री सिखाई कि तुम पहले लीप करो गाय के गोबर का अपने घोंसले की अंदर दीवारों में, और फिर वो रेडियम के लिए तुम पकड़ो उनको जुगनू को और लाके चिपका दो उनको, तो रोशनी हो जाएगी। तो इंजीनियरिंग में भी एक परिंदा आगे, एक लाख आंधी तूफान हो इसका जो घोंसला है उसको कोई नुकसान नहीं होता, और अंदर उसके वो जो रोशनी है उसका इंतजाम, उसकी ऐसी केमिस्ट्री किसने सिखाई इसको? ये तो केमिस्ट्री में अगर हम दावा करें कि हम आगे हैं, हम आगे नहीं है भाई, وہ کسی یونیورسٹی کالج میں جائے بغیر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی معلومات دی ہے کہ وہ یہ ہم سے آگے ہے وہ کیمسٹری. یہ پرندہ چھوٹا سا پرندہ ہے, ہاں بالکل ہمیں دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہے. اچھا ہم کہیں کہ طب میں ہم آگے ہیں, ڈاکٹری طبابت علاج معالجے میں ہم آگے ہیں, نہ اس میں بھی آپ آگے نہیں ہیں. قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ ہندوستان میں ایک جگہ پہنچے, دارالعلوم کے محتمم سے 40 سال تک محتمم رہے, ہندوستان میں ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں بندر بہت تھے اور وہاں کئی دن کا ان کا سفر تھا. تو فرمانے لگے کہ میرے اور میرے ساتھیوں کے یہ جو بندر تھے نا, بندر کی خاصیت یہ ہے کہ تنگ کرتا ہے آدمی, ایزا پہنچاتا ہے, تکلیف پہنچاتا ہے, اور تکلیف بھی ایسی ویسی نہیں, اچھی طرح تکلیف پہنچاتا ہے. تو فرمایا ہمارے میرے اور میرے ساتھیوں کے کوئی 10 کے قریب کپڑے جوڑے یہ اٹھا کے لے گئے ان دنوں میں, اور سامنے دیوار پہ بیٹھ کے پھاڑتے تھے دکھا دکھا کے. اب بتائیے, ایک تو کپڑے کے جانے کا غم کہ بھائی کرتا چلا گیا, ارے بھائی میری شلوار چلی گئی, ارے میری لنگی چلی گئی, ایک تو لنگی کے کرتے اور شلوار کے جانے کا غم تو ہے ہی, اور وہ سامنے بیٹھ کے پھاڑ رہے ہیں, آپ کے سامنے پھاڑا جا رہا ہے, اس کے چیتڑے اڑائے جا رہے ہیں, آپ کیا سب ہے. اور برتن اٹھا کے لے گئے, انہوں نے کہا برتن کے برتن اٹھا کے لے گئے, کھانا بھرا ہوا برتن اور لے گئے اٹھا کے, کیا کر سکتے ہیں آپ. یہ اس کی فطرت ہوتی ہے بندر کی. وہ ہمارے ایک ساتھی حج پہ گئے ہوئے تھے تو انہوں نے سوچا کہ غارِ حرا میں زیارت کے لیے گئے, تو وہاں پہ بندروں کا ایک پورا غول آ گیا, بڑے بڑے بندر, ایسے نہیں وہ چھوٹے موٹے, بڑے بڑے بندر, انہوں نے سب کے بٹوے وٹوے چھینے, بسکٹ کے ڈبے پانی کی بوتلیں سب چھین کے اب بھاگ گئے. کہہ رہے میرا پاسپورٹ تھا اس کے اندر ریال تھے, سب لے کے بھاگ گئے, وہ بیگ بھی لے کے بھاگ گئے. یہ ہے اس کی فطرت ایسی ہوتی. آپ بتائیے, پورا غول آیا اور پورا ڈاکوؤں کا غول تھا, بندر جو تھے وہ ڈاکو بندر تھے, سب لے کے چلے. تو جب 10-12 جوڑے فرمایا ہمارے ضائع ہو چکے اور ہمارے سامنے انہوں نے بیٹھ کے پھاڑے ہمارے جوڑے, تو ہم نے کیا کیا کہ سنکھیا منگوایا بازار سے, بہت غصہ آیا ہوا تھا سب کو, یہ کیا طریقہ ہے, کیا معاملہ ہے, روٹیاں روٹ پکوائیں آٹے میں اور سنکھیا ملا دیا, زہریلی روٹیاں, اور وہ چھت پہ رکھ دی کہ اب یہ آئیں گے اور کھائیں گے اور مریں گے, سنکھیا کھا کے مرنا ہی ہے, مریں گے آگے. اور چھپ کے بیٹھ گئے, خود بھی قاری صاحب فرماتے ہیں میں اور میرے ساتھی چھپ کے بیٹھے, دیکھتے ہیں اب یہ آئیں گے کھائیں گے مریں گے ہمارے سامنے, ذرا ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی, اتنا انہوں نے ستایا ہم کو. اب چھپ کے دیکھنے لگے کہ کیا ہوتا ہے, تو پہلے 3 بندر آئے, انہوں نے جو آ کے دیکھا یہ 25-30 روٹیاں, یہ پہلے تو کبھی انہوں نے ہم سے تو یہ چھپا کے رکھتے ہیں, آج انہوں نے بالکل چھت پہ رکھ دی روٹیاں. تو پہلے انہوں نے آ کے دیکھا 3 بندر آئے اور پھر چلے گئے دیکھ کے. پھر وہ جب چلے گئے تو 15-20 بندر اپنے ساتھ لے کر آئے, وہ ان سے بھی بڑے بندر تھے, وہ آ کے بیٹھے, انہوں نے ان میں آپس میں اشارے ہوتے رہے, پھر ان میں سے ایک بندر, اب یہ قاری صاحب فرما رہے ہیں ہم دیکھ رہے تھے سب, پھر ایک بندر آگے بڑھا, اس نے پہلے روٹی کو اٹھا کے سونگا, پھر اس نے روٹی رکھ دی, پھر دوسرا بندر آگے بڑھا, اس نے روٹی کے ٹکڑے کیے اور ایک ایک ٹکڑے کو سونگا, اور اس نے اشارہ کیا, سب بھاگ گئے, سارے بندر بھاگ گئے روٹیاں چھوڑ کے. قاری صاحب سمجھ گئے کہ ہماری یہ تدبیر ان کے سمجھ میں آ گئی ہے کہ انہوں نے زہریلی روٹیاں ہیں, زہر ملایا ہوا ہے, سب ان کو پتہ چل گیا, سب چھوڑ کے اور بھاگ گئے. تھوڑی دیر کے بعد سارے بندر, اس سے بھی زیادہ, فرمایا 50-60 کے قریب بندر آئے اور ہر ایک کے ہاتھ میں ہری سی ایک شاخ تھی, ایک شاخ ہرے اس میں پتے لگے ہوئے ہر ایک کے ہاتھ میں تھی, انہوں نے خوب ڈٹ کے پہلے روٹیوں کے ٹکڑے کیے, جتنے بندر تھے تقریباً اتنے ہی ٹکڑے ہو گئے روٹی کے, پھر انہوں نے خوب روٹیاں کھائیں, اور روٹیاں کھانے کے بعد وہ اس شاخ سے پتے توڑ توڑ کے کھاتے رہے, اور بڑے آرام سے روٹیاں کھا کے اور خوب ٹہلتے ہوئے اور مٹکتے ہوئے واپس جنگل کی طرف چلے گئے. اس وقت قاری صاحب نے فرمایا کہ اب ہم سمجھے کہ یہ ہمارا آٹا بھی گیا, سنکھیا جو منگایا وہ بھی گیا, सब कुछ गया, कपड़े तो पहले ही जा चुके थे। फरमाया ये इन्होंने वो तिरयाक लेकर आए थे, ऐसी बूटी तोड़कर लाए थे जंगल से जो संखिया जैसे जहर को नाकारा बना दे, उसका असर नहीं होता। वो पहले रोटियां खाई और उसके ऊपर से वो बूटी खा ली तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अगर आप ये कहते हैं कि हम इलाज मुआलजे में आगे हैं, तो जहर जैसी संख्या जैसे जहर को उन्होंने खा के और उस पर रोटियां खा ली और उसके ऊपर ये खा लिया, तो कौन आगे हुआ भाई है? अगर आप इलाज मुआलजा करते हो तो आप तो 5 साल आप मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, या हकीम बनने के लिए 3 साल चाहिए होते हैं, आप 3 साल वहां पढ़ते हैं जाके, बहुत से आपको जतन करने पड़ते हैं, मगर इन्होंने कहां दाखिला लिया? ये कहां रहे? ये बंदर कहां से इन्होंने तालीम पाई है? तो हम इस मामले में भी इनसे पीछे हैं जानवरों से। मुर्गाबी जो है, मुर्गाबी इनकी पूरा पूरा गौल होता है, इनका पूरा निजाम अपना है। रात के वक्त एक मुर्गाबी एक टांग पे खड़े होके, ये उनका अपना एक अंदाज होता है, पानी में एक टांग पे खड़े होके वो पहरा देती है। अगर कहीं खतरा महसूस हो तो सबको जगा के और फिर ये उड़ती हैं एक साथ। अच्छा, इनका एक अमीर होता है, अमीर को आगे रखा जाता है, तिकोन शक्ल में ये उड़ती हैं, अमीर को आगे रखती हैं, और जहां इनका अमीर जाके बैठे वहां ये बैठती हैं, वरना अपनी मर्जी से कहीं नहीं बैठती। ये इनका अपना अलग एक निजाम है और वो उसी के साथ उड़ती हैं अमीर की क़यादत में, अमीर आगे होता है। आप उसे नज्म व ज़ब्त में अगर आप कहें नहीं, आप इसमें भी हमसे ये आगे हैं, और इसी तरह नवाब हैदराबाद दक्कन, नवाब उस्मान अली खान जो हैदराबाद दक्कन के नवाब थे, इनके वजीर, ये खुद एक दफा शिकार के लिए गए, वजीर भी साथ थे, हैदराबाद की पूरी रियासत थी, तो वजीर जो थे इनसे बिछड़ गए शिकार खेलते हुए, बिछड़ गए कहीं, और वो बिल्कुल वीराने में निकल गए। वहां पहुंचे वीराने में तो एक शेर सामने से आ गया और उसने इशारा किया कि चलो इधर मेरे साथ चलो, और आप क्या कर सकते थे, जाना पड़ा, उसकी इताअत करनी पड़ी। वो लेकर इनको ऐसी जगह पहुंचा जहां उसकी जो शेरनी थी उसके बहुत बड़ा कांटा चुभा हुआ था पैर में, और उसने इशारे से कहा निकालो इसको, और उनके पास पूरा फर्स्ट एड बॉक्स था, ये जानते हैं जानवर, तो फर्स्ट एड बॉक्स पूरा था। उन्होंने जल्दी जल्दी अपनी मरहम पट्टी निकाली, निकालो सही करो इशारे से वो कहने लगा। अब ये उसकी मरहम, वो शेरनी करा रही है दर्द से, इन्होंने औजार निकाले, मरहम वगैरह निकाला, पट्टी निकाली, इतने में शेर चला गया, कहीं चला गया। इन्होंने पट्टी की मरहम लगाई, उसका कांटा निकाला, उसको साफ किया, दवाई लगाई और फिर मरहम लगा के उसकी पट्टी कर दी। उस शेरनी ने कुछ नहीं कहा इनको, इतने में शेर वापस आया, इधर ये पट्टी से फारिग हुए, उधर वो शेर वापस आया। उसने एक बूटी इनको दी इनके हाथ में और एक बूटी अपने पास रखी, और पहले खुद खाई वो बूटी और फिर इनसे कहा कि तुम भी खाओ इसको। अब वो खानी पड़ी तो उसको कह रहा था खाओ, तो खा ली उसने, इन्होंने खा ली बस। फिर उसने कहा जाओ, अभी ये वापस आ गए। वापसी के 3 दिन के अंदर अंदर इनके सारे जो 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 बाल थे जिस्म के वो गिर गए। 64 साल की उम्र थी उनकी, 64 साल। अब जो बाल आए तो सारे काले बाल, सारे काले। और उन्होंने नवाब हैदराबाद दक्कन को बताया कि मैं 64 साल का बुढ़ा इस वक्त अपने आप को 17 साल का नौजवान महसूस कर रहा हूं, और मुझे अफसोस है कि वो बूटी जल्दी में मैं देखना भूल गया, फौरन मैंने खा ली, क्योंकि खानी उसने इशारा किया था खाओ तो मैंने खा ली, देख ही नहीं कि वो बूटी कौन सी थी जो बुढ़े को जवान बनाने वाली बूटी थी। अगर आप कहें कि हम इलाज मुआलजे में हम आगे हैं, कौन इंसान है वो जंगल से ही तोड़ के लाया वो बूटी शेर? कोई आज तक इंसान ये बूटी दरियाफ्त ना कर सका, कोई बड़े से बड़ा हकीम, एक शेर को मालूम है हम आगे हैं या वो आगे हैं? हम आगे हैं या ये जानवर आगे हैं? मकड़ी को देख लीजिए कैसा वो जाला बनाती है, मक्खी को जब शिकार करती है तो मक्खी निकल नहीं पाती उसके जाले से, लाख आंधी हो तूफान हो बारिश हो उसका जाला कायम रहता है, न जाने किस, हालांकि इतना नरम मगर फिर भी कायम रहता है। कोई उस पर फर्क नहीं पड़ता। किसने उसको ये इंजीनियरिंग सिखाई? अल्लाह। तो बस भाई, और काज परिंदा होता है, ये पाया जाता है साइबेरिया में। ये अंडे देकर आता है यहां पर, पाकिस्तान आ जाता है सर्दियों के जमाने में, यहां आ जाता है जब वहां का दर्जा वो सर्दी बहुत हो जाती है, तो वो यहां आ जाता है अंडे देकर, और यहां से बैठ के अपने अंडों पर तवज्जो डालता है। अच्छा, अंडों के पास खुराक रख के आता है, अच्छी खासी खुराक वो जखीरा करके आता है। यहां से बैठ के वो अंडों को सेकता नहीं है, तवज्जो यहां से बैठ के डालता है खास परिंदा, और फिर उसके बच्चे निकलते हैं अंडों से, उसी की तवज्जो से यहां बैठ के बलूचिस्तान में और सिंध में बैठ के, और तवज्जो डाल रहे हैं वहां अंडों पे, तो अंडों से बच्चे निकलते हैं। बच्चे जो करीब उसके खाना वो पहले से रख के आते हैं, वो खाना खाते रहते हैं यहां तक के उड़ने के काबिल हो जाते हैं, और वो बच्चे जिस जोड़े के होते हैं अपने माँ बाप के पास यहीं उड़ के पहुंचते हैं, यही जान के माँ बाप होते हैं यहां पर, वहीं वो उड़ के अपने ही माँ बाप के पास, हर बच्चा अपने माँ बाप के पास पहुंचता है। दूसरे खास परिंदे का बच्चा निकलेगा तो उसी के पास पहुंचेगा। ये क्या है भाई? है मेरे दोस्तों, हम बहुत पीछे हैं। याद रखिए, अगर हमें अल्लाह की मारिफत हासिल नहीं है, अल्लाह की पहचान हासिल नहीं है, तो ये जानवर हमसे बहुत आगे हैं, हर चीज में आगे हैं हमसे। ये जो वेल मछली है, ये अपने अंदर से रेडियाई लहरें खारिज करती है, रेडियाई लहरें। जहां कहीं भी इसकी दूसरी वेल मछलियां हों, ये उनको पैगाम पहुंचा सकती है। समंदर के अंदर अंदर हजारों मील दूर ये पैगाम पहुंचा देती है अपनी साथी वेल मछलियों, रेडियाई लहरों की उससे मदद से। हम तो वायरलेस के मोहताज है ना, उसको उसकी जरूरत नहीं है। पानी में होते हुए ही अपना पैगाम पहुंचा देती है, और किसी जहाज पे हमला करना हो, ये सब इकट्ठी हो जाती है। मेरे भाइयों, अगर हम अल्लाह वाले ना बने, तो बस ये बेकार है सब कुछ। ये जानवर हमसे बहुत बेहतर हैं, बहुत आगे हैं, हर लिहाज से आगे हैं। इसलिए अल्लाह की ये अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अरे मेरे बंदे, मैंने तो तुझे इसलिए पैदा किया है कि तू मेरी मारिफत हासिल कर, मेरी पहचान हासिल कर कि मैं कौन हूं। वरना डॉक्टरी में, इंजीनियरिंग में, सल्तनत में, निजामे सल्तनत में, घर बनाने में, ये सारे जानवर और इलाज मुआलजे में, ये सब तुझसे बेहतर है, तुझसे कहीं ज्यादा इनके पास आगे की टेक्नोलॉजी है। तू तो इनसे बहुत पीछे है, तू बस मेरी मारिफत हासिल कर ले तो तू इनसे आगे बढ़ सकता है। ये सब कुछ सही, ये जानवर इनके पास सब कुछ है, मगर अल्लाह की निस्बत, अल्लाह की दोस्ती अगर हम हासिल कर लें तो हम इनसे आगे उस वक्त बढ़ सकते, वरना हम पीछे हैं इनसे। इसलिए फरमाया कि मारिफत अल्लाह की पहचान कराने वाले से होती है। उसकी एक मिसाल सुन लीजिए। एक आदमी चला गया रोजगार के लिए कहीं दूसरे मुल्क में, उसका छोटा सा बच्चा था। वो बहुत अरसे के बाद आया, अब बच्चा जवान हो चुका था। बच्चे को इत्तला हुई कि मेरा बाप आ रहा है, वो भी एयरपोर्ट पहुंचा या रेलवे स्टेशन पहुंचा अपने बाप को का उसका इस्तकबाल करने के लिए और उसको घर तक लाने के लिए, और किसी बूढ़े को साथ ले लिया जो उसके बाप को पहचानता था। उस बूढ़े को साथ ले लिया जो उसके बाप को पहचानता था। इतने में एक और बूढ़ा आदमी आया, ये बूढ़ा आदमी कहीं चला गया, जो पहचान के लिए गया था, बाप की पहचान कराने के लिए कहीं चला गया कि भाई मैं पानी पी के आता हूं या मेरी फुलां जरूरत है वो पूरी करके मैं आता हूं। ये गया, इतने में इसके पास एक बुड्ढा आया, उसने कहा बेटा ये मेरा जरा सामान वहां तक पहुंचा दो। तो उसने कहा जाओ जाओ बाबा, मैं अपने बाप के इंतजार में हूं, अगर मेरा बाप निकल गया तो क्या होगा। बहुत मुश्किल होगी, परेशानी होगी, इसलिए मैं आपका सामान मैं नहीं उठा सकता, आप जाओ, मैं तो अपने बाप को तलाश कर रहा हूं। इतने में वही बूढ़ा आ गया जो पहचान कराने के लिए ले गया था ये। उसने कहा बेटा यही तो तुम्हारे बाप है। तो अभी तो वो इनकार कर रहा था कि जाओ जाओ, अब वो गले लगा रहा है, माफी मांग रहा है। ये है पहचान। पहचान हो गई तो मोहब्बत हो गई। पहचान से पहले क्या था? इनकार कर रहा था, मोहब्बत थी नहीं तो इनकार कर रहा था कि बाबा जाओ हटो। जब पहचान हो गई तो अब माफी मांग रहा है, पैर पकड़ रहा है कि अब्बा मुझे माफ कर दो। पहचान कराने वाले से पहचान होती है, मुआर्रिफ से। पहचान कराने वाला कौन? शेख। वो पहचान कराता है कि अल्लाह कौन है, और इसी को अल्लाह कुरान में फरमाते हैं अर्रहमान फसअल बिही खबीरा। रहमान कौन है? किसी बाखबर से पूछो। रहमान की खबर तो फसअल, सवाली बन जाओ, सवाली। सअला यसअलू का लफ्ज है, अमर का सीगा है, फसअल सवाली बन जाओ, सवाल करो बिही उस रहमान के बारे में किसी बाखबर से। और देखो खबीरा मुफरद है ना, खबीरा अर्रहमान फसअल बिही खबीरा, किसी एक बाखबर से पूछो, मुफरद है। यानी बहुत सारे बाखबर तो बहुत सारे हैं, आपको जिससे मुनासबत है किसी एक से होगी, आप उसके पास जाइए, उससे पूछिए, उससे अल्लाह की मोहब्बत सीखिए। आप सीखते रहेंगे, आपको पहचान होती रहेगी, मोहब्बत बढ़ती रहेगी कि अल्लाह ऐसे हैं, अल्लाह इतने करीम है, अल्लाह इतने रज़ाक हैं, अल्लाह इतने रहमान है, अल्लाह इतने रहीम है। तो आपको अल्लाह की मोहब्बत हासिल होती रहेगी। अल्लाह ताला, आज ईद का मौका है ना, लोग भी कम हैं, और आज हम भी जल्दी छुट्टी दे देते हैं, ठीक है भाई, इतना काफी है। इस ये कोई अगर इस पर अमल कर ले तो इतना भी बहुत है ना। बस अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आज जानवरों की बातें चिड़ियाघर में पहुंचा दिया था मैंने, तो बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि ईद का मौका है ना, तो ईद पे बाद लोग चिड़ियाघर जाते हैं, मगर मैंने आपको यहीं उसका फराहम कर दिया। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका वनतूबु इलैक।